हम अक्सर ना मतलब हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करती है।
हाँ, एक वेंडिंग मशीन, बिल्कुल सही उपमा है।
है ना, मतलब हम उस मशीन में एक सिक्का डालते हैं, जैसे कोई अच्छा काम कर दिया, किसी की मदद कर दी, या बस ईमानदारी से रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि बदले में मशीन हमें तुरंत एक रिवॉर्ड या कोई आशीर्वाद दे देगी।
एकदम, हम चाहते हैं कि सब कुछ बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो।
हाँ, हमारे लिए ये कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम का एक बहुत ही सीधा सा गणित है।
हमें लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है।
बिल्कुल नहीं होता, और ये हमारी बुनियादी मानवीय फितरत है कि हमें ऐसे सीधे समीकरण बहुत पसंद आते हैं।
क्यों, मतलब हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये ना हमें सुरक्षा का एक गहरा एहसास देते हैं। दुनिया को अच्छे और बुरे के खानों में बांटना और ये मानना कि हर अच्छे काम का इनाम और हर बुरे काम की सजा तुरंत मिलेगी, इससे हमें ये भ्रम होता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम बस जीवन की अनिश्चितता से बचना चाहते हैं।
सही बात है, लेकिन फिर हम बुक ऑफ जॉब के अंत में पहुंचते हैं और अचानक हमारी वो सुरक्षित वेंडिंग मशीन काम करना बंद कर देती है।
हाँ, वो पूरी तरह से टूट जाती है।
बिल्कुल, हम सिक्का डालते हैं और रिवॉर्ड की बजाय उस मशीन से एक आग उगलने वाला रहस्यमयी जीव बाहर आ जाता है। मतलब जरा सोचिए, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया हो, जो बस जवाब मांग रहा हो, उसे सांत्वना देने के बजाय ईश्वर कुछ ऐसे जीवों की बात करने लगते हैं जो सीधे किसी डरावने सपने से निकले हुए लगते हैं।
और यही वजह है कि यह हिस्सा बहुत से लोगों को पूरी तरह से उलझा हुआ और बेतुका लगता है।
तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय ठीक यही है। हम जाने माने विद्वान जॉन वॉल्टन के विश्लेषण के जरिए बुक ऑफ जॉब के सबसे जटिल हिस्से को डिकोड करने वाले हैं, यानी याहवे का दूसरा भाषण,
जहां बहमूत और लेवियाथन नाम के दो विशाल जीवों की एंट्री होती है।
हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि ये हिस्सा, जिसे अक्सर लोग समझ से बाहर मानकर छोड़ देते हैं, असल में इस पूरी किताब का मुख्य संदेश कैसे है। ये पहली नजर में किसी पौराणिक मॉन्स्टर मूवी की तरह लग सकता है।
हाँ, मॉन्स्टर मूवी, बिल्कुल।
लेकिन इसके पीछे का दर्शन हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं।
बहुत से पाठक ना इस हिस्से तक पहुंचते पहुंचते हार मान लेते हैं।
हाँ,
मुझे लगता है कि ईश्वर तो मुख्य मुद्दे से ही भटक गए।
हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था।
लेकिन वॉल्टन का विश्लेषण हमें दिखाता है कि यहीं पर वो असली चाबी छिपी है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि इंसानों को दुनिया और ईश्वर के बारे में असल में कैसे सोचना चाहिए। ये सिर्फ जॉब की अज्ञानता को दूर करने के बारे में नहीं है।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इससे पहले कि हम इन रहस्यमयी जीवों के बारे में बात करें, हमें उस अदालती माहौल को समझना होगा जहां से ये चर्चा शुरू होती है।
वो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है।
जॉब अपनी भयानक तकलीफों का जवाब मांग रहा था। उसने अपना परिवार, संपत्ति, सेहत सब कुछ खो दिया था, और वो लगातार कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है।
वो एक तरह से ईश्वर को अदालत में घिसेटना चाहता था।
बिल्कुल, वो चाहता था कि ईश्वर जवाबदेह हो, लेकिन जब ईश्वर तूफान के बीच से आते हैं तो वो जॉब के सवालों का सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि खुद सवालों की झड़ी लगा देते हैं।
और यहाँ पर ना मूल पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाई बदलाव होता है। जब ईश्वर तूफान से बोलते हैं तो उन्हें एलोहिम या अलशदाई नहीं कहा गया है।
अच्छा,
तो क्या कहा गया है?
यहाँ यावे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूरी चर्चा के दौरान जॉब ने अपने भाषणों में अलशदाई का जिक्र किया था, जिसका अर्थ होता है एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो न्याय करता है।
मतलब एक बहुत ही दूर बैठा हुआ जज।
हाँ, बिल्कुल। लेकिन यावे एक बहुत ही व्यक्तिगत इजरायली संदर्भ वाला नाम है, जो एक आपसी संबंध या कवनेंट को दर्शाता है। यह बदलाव हमें बताता है कि ईश्वर यहाँ केवल एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि रचयिता के रूप में आए हैं।
और आते ही यावे जॉब से कहते हैं,
एक आदमी की तरह अपनी कमर कस लो, मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे।
मतलब स्थिति पूरी तरह से उलट गई।
एकदम, अब तक जॉब सवाल पूछ रहा था और अब ईश्वर पूछ रहे हैं।
जॉब ईश्वर के न्याय को कटघरे में खड़ा कर रहा था। ईश्वर उसकी पीड़ा को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत सीधा सवाल करते हैं,
क्या तुम खुद को सही साबित करने के लिए मेरे न्याय को गलत ठहराओगे?
और जॉब की सबसे बड़ी वैचारिक गलती यहीं पर थी। उसने अनजाने में ईश्वर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिया था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए।
हाँ, वही प्रतिशोध का सिद्धांत जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा और बुरे के साथ तुरंत बुरा होना चाहिए।
तो ईश्वर उसे क्या जवाब देते हैं?
ईश्वर जोब को चुनौती देते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड चलाना इतना ही आसान है, तो लो एक दिन के लिए तुम खुद अहंकारी लोगों को कुचल कर दिखाओ, तुम खुद न्याय करके दिखाओ।
अरे वाह, ये चुनौती मुझे ना एक एनालॉजी की याद दिलाती है। मान लीजिए हम किसी कमर्शियल फ्लाइट में बैठे हैं, प्लेन भारी तूफान में फंस गया है और हवा के झटके मतलब टर्बुलेंस बहुत तेज है।
डरावनी स्थिति है।
हाँ, और हम अपनी सीट पर बैठे बैठे शिकायत कर रहे हैं कि पायलट को प्लेन उड़ाना नहीं आता, ये कैसा रास्ता चुना है, इसे तो सीधे जाना चाहिए था।
हम अक्सर ऐसा ही करते हैं।
और अचानक वो पायलट कॉकपिट से बाहर आए, हमें पूरे हवाई जहाज का कंट्रोल थमा दे और कहे लो अब तुम उड़ाकर दिखाओ, तुम 300 यात्रियों की जान, ईंधन, रडार और इस तूफान को एक साथ मैनेज करके दिखाओ।
ये एक बहुत ही शानदार उपमा है। हम सिर्फ अपनी हिलती हुई सीट को महसूस कर रहे होते हैं।
हाँ, हमें बस अपना झटका लग रहा होता है,
लेकिन पायलट पूरी एविएशन व्यवस्था को देख रहा होता है। ब्रह्मांडीय न्याय की जटिलता भी कुछ ऐसी ही है। ईश्वर जोब को यह एहसास दिला रहे हैं कि दुनिया की व्यवस्था उस साधारण गणित से कहीं ज्यादा जटिल है।
केवल अच्छे को इनाम और बुरे को सजा देना बहुत सतही है।
बिल्कुल, वास्तविकता में अनगिनत धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और यहीं पर कहानी में वो अजीब मोड़ आता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इंसान की सीमाओं को साबित करने के लिए ईश्वर तारों, आकाशगंगाओं या पहाड़ों का उदाहरण नहीं देते, वो दो भयानक जीवों का जिक्र करते हैं, बहमोत और लिव्याथन,
जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है।
मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि यहाँ बहमोत शायद कोई दरियाई घोड़ा मतलब हिप्पो है और लिव्याथन एक मगरमच्छ है, लेकिन वॉल्टन इसे सिरे से खारिज कर देते हैं ना?
एकदम खारिज कर देते हैं। अगर हम इन जीवों की विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें, तो वे किसी भी ज्ञात प्राकृतिक प्रजाति से मेल नहीं खाते।
डायनासोर से भी नहीं?
डायनासोर से भी नहीं। उदाहरण के लिए लिव्याथन के बारे में लिखा है कि उसके मुंह से आग निकलती है और उसकी नाक से धुआं। हमारे पास ऐसे किसी जैविक जीव का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये किसी मगरमच्छ का वर्णन तो कतई नहीं है।
तो फिर ये आखिर है क्या? ईश्वर इन काल्पनिक जीवों के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं?
प्राचीन निकट पूर्व के दर्शक इन्हें सुनते ही तुरंत पहचान लेते। उनके लिए ये कोई आम जानवर नहीं थे, ये केओस क्रीचर्स थे, यानी अव्यवस्था के जीव।
रुको रुको, अव्यवस्था के जीव, क्या इसका मतलब ये है कि ये दुनिया को तबाह करने वाले दुष्ट राक्षस हैं?
ये समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन दुनिया का नजरिया हमारे आज के नजरिए से अलग था। ये जीव ऐसे हैं जो हमारी व्यवस्थित दुनिया की परिधि पर मतलब एकदम किनारे पर मौजूद हैं।
किनारे पर मतलब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है।
इन्हें लिमिनल जीव कहा जाता था, जिनका एक पैर हमारी सुरक्षित दुनिया में है और दूसरा उस जंगली अव्यवस्थित दुनिया में। कलाकृतियों में इन्हें अक्सर मिश्रित जीवों के तौर पर दिखाया जाता था, जैसे शेर का सिर और चील के पंख।
तो अगर कोई उस जमाने में मगरमच्छ देखता तो वो क्या सोचता?
वो ये कहता कि ये असल जानवर शायद उन विशाल केओस क्रीचर्स के छोटे रूप हैं, लेकिन वे खुद बेहमत या लिव्याथन नहीं है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये अव्यवस्था के जीव हैं जो तबाही लाते हैं, तो एक दयालु ईश्वर इन्हें बनाएगा ही क्यों?
यही तो सबसे दिलचस्प बात है।
मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई अपने ही बनाए सुंदर बगीचे में जानबूझकर जंगली कांटे बो रहा हो। उत्पत्ति यानी जेनेसिस 1.21 में समुद्री जीवों के लिए हिब्रू शब्द 12 का प्रयोग किया गया है।
हाँ, 12, जिसका मतलब है ईश्वर ने उन्हें रचा है।
तो क्या ईश्वर ने जानबूझकर दुनिया में अव्यवस्था पैदा करने वाले जीव बनाए हैं?
वॉल्टन के विश्लेषण का सबसे गहराई वाला हिस्सा यही है। हमें अव्यवस्था यानी केओस और बुराई यानी इविल के बीच का अंतर समझना होगा। ये जीव नैतिक रूप से बुरे नहीं है।
अच्छा,
लेकिन वो तबाही मचाते हैं ना?
तबाही मचाते हैं, लेकिन वो ईश्वर के दुश्मन नहीं है। इसे समझने के लिए एक भयानक बवंडर या टॉर्नेडो के बारे में सोचिए।
मतलब हम इन जीवों को एक प्राकृतिक आपदा की तरह देखें?
बिल्कुल। क्या एक बवंडर नैतिक रूप से बुरा या दुष्ट होता है? क्या उसके अंदर कोई द्वेष होता है?
नहीं, बवंडर कोई विलेन तो नहीं होता, लेकिन क्या वो भारी तबाही मचा सकता है? 100%, क्योंकि वो बस वही कर रहा है जो बवंडर करते हैं। वो अपनी मूल प्रवृत्ति पर काम कर रहा है।
ओहो, मतलब ये केओस क्रीचर्स भी ऐसे हैं?
हाँ, ये नॉन ऑर्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि एंटी ऑर्डर या बुराई का। जैसे ईडन के बगीचे के बाहर उगने वाले जंगली कांटे, ईश्वर ने उन्हें बनाया है, वे ईश्वर के नियंत्रण में हैं, लेकिन वो इंसान के लिए पालतू नहीं है।
ये नजरिया तो आदमी को पूरी तरह बदल देता है यार। मतलब ये कोई हॉलीवुड फिल्म के विलन नहीं है जिन्हें हीरो अंत में मार गिराएगा। ये तो ब्रह्मांड के डिजाइन का ही एक हिस्सा है।
और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इनकी शारीरिक पहचान से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किताब में इनका साहित्यिक इस्तेमाल कैसे हुआ है।
साहित्यिक इस्तेमाल?
हाँ, ये एक साहित्यिक पात्र के रूप में यहाँ मौजूद हैं, जिनका एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है।
तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक उद्देश्य को डीकोड करते हैं। बहमोत से शुरू करते हैं। यदि ये केवल चिड़ियाघर का कोई जानवर नहीं है, तो ईश्वर एक दुखी और टूटे हुए जॉब को इसके बारे में क्यों बता रहे हैं?
जॉब 40.15 में यावे कहते हैं, बहमोत को देखो जिसे मैंने तुम्हारे साथ ही बनाया है।
हाँ, यहाँ ईश्वर साफ तौर पर जॉब और बहमोत को एक ही तराजू में रख रहे हैं।
बिल्कुल, ईश्वर जॉब को बहमोत की शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से परिचित करा रहे हैं। ईश्वर बताते हैं कि बहमोत संतुष्ट है, मजबूत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो उफनती नदी से बिल्कुल नहीं घबराता।
मतलब जब नदी में बाढ़ आती है तब भी?
हाँ, जब नदी का पानी पूरे वेग से उसके मुंह तक आ जाता है तब भी वो शांत रहता है। वो सुरक्षित है और उसे किसी के द्वारा फंसाया नहीं जा सकता।
तो इन सब का जॉब के साथ क्या कनेक्शन है? जॉब तो इतनी तकलीफ में था, शरीर पर फोड़े थे, राख में बैठा था, उसे एक ऐसे जानवर के बारे में क्यों बता रहे हैं जो इतना रिलैक्स्ड है?
इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अध्याय 7 में जॉब ने शिकायत की थी कि ईश्वर उसके साथ किसी केओस क्रीचर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया हो।
हाँ, वो खुद को विक्टिम मान रहा था।
अब ईश्वर पलट कर कह रहे हैं, जॉब तुम शिकायत कर रहे हो कि मैं तुम्हें एक केओस क्रीचर की तरह मान रहा हूँ, लेकिन असल में इस उथल पुथल के समय में तुम्हें खुद बेहमौत जैसा होना चाहिए।
ओह, अब समझ आया। मतलब ईश्वर जॉब को बेहमोत की ताकत से डरा नहीं रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने अंदर के बेहमोत को जगाओ।
एकदम सही।
जीवन में चाहे जितनी उथल पुथल हो, न्याय समझ में आए या ना आए, तुम्हें पहाड़ की तरह शांत और अडिग रहना चाहिए। जब दुख और अन्याय की नदियां तुम्हारे गले तक आ जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए।
ईश्वर उसे यही सिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमेशा उथल पुथल रहेगी, दुनिया पूरी तरह से सेफ और प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बेहमोत जैसी होनी चाहिए, अडिग।
बेहमोत एक आईना है जो सिखाता है कि हमें भीतर से कैसा होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन उस बाहरी दुनिया का क्या, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं? और यहीं पर दूसरे जीव की एंट्री होती है, लिव्याथिन, जो मुझे लगता है कि ये सिखाता है कि इंसान ईश्वर के साथ क्या नहीं कर सकता।
बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि बेहमोत के ठीक बाद ईश्वर लेव्याथन का जिक्र करते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं।
वे सवाल बस अलंकारिक नहीं है ना?
नहीं, वे इंसान की हैसियत की चुनौती देते हैं। ईश्वर पूछते हैं, क्या तुम लेव्याथन को मछली पकड़ने वाले कांटे से बाहर खींच सकते हो? क्या तुम उसके साथ कोई समझौता कर सकते हो ताकि वो तुम्हारा गुलाम रहे?
क्या तुम उसे अपने बच्चों के खेलने के लिए पालतू बना सकते हो?
हाँ, क्या वो तुमसे दया की भीख मांगेगा?
और जाहिर है इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मतलब कोई पागल ही होगा जो आग उगलने वाले लेव्याथन को पालतू कुत्ता बनाने की सोचेगा।
और यहीं पर वॉल्टन का सबसे गहरा विश्लेषण सामने आता है। ईश्वर यहाँ लेव्याथन को हराने की डींगे नहीं हांक रहे हैं, वो बस ये बता रहे हैं कि लेव्याथन कितना अधम्य और जंगली है।
तो इसका जॉब से क्या लेना देना?
ईश्वर जॉब के सामने एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं। यदि तुम लेव्याथन जैसे जीव को अपने तर्कों से पालतू नहीं बना सकते, उससे समझौता नहीं कर सकते, तो तुम यावे के साथ ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो?
यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें तो जॉब पूरी किताब में यही तो करने की कोशिश कर रहा था।
बिल्कुल, वो ईश्वर से कानूनी समझौता चाहता था।
वो कहना चाहता था कि मैंने अच्छे काम किए हैं तो तुम मुझे खुशियां दो। और हम सब भी अक्सर ईश्वर को उसी वेंडिंग मशीन की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्म वो सिक्के हैं जिन्हें डालकर हम आशीर्वाद खरीद लेंगे।
हम ईश्वर को एक लगाम पहनाना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन लिव्याथन के जरिए ईश्वर बता रहे हैं कि वो कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक असीम और जंगली महासागर है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती वसूला जा सके।
वॉल्टन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये हिस्सा ये बिल्कुल नहीं बताता कि ईश्वर लिव्याथन को हराकर उसे खत्म कर देते हैं। संदेश ये है कि लिव्याथन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और ना ही ईश्वर को।
आप ईश्वर को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते।
एकदम, ब्रह्मांड को चलाने वाला हमारे सीमित नैतिक पैमानों में कैद नहीं हो सकता।
तो जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि वो ब्रह्मांड के रचयिता को एक कुत्ते के पट्टे पर बांधने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है?
और यही हमें किताब के सबसे अहम हिस्से तक ले जाता है, जॉब का अंतिम जवाब।
और वॉल्टन के अनुसार ये जवाब पश्चाताप को लेकर हमारी समझ को ही बदल देता है ना?
हाँ, अध्याय 42 में जॉब स्वीकार करता है कि उसने उन चीजों के बारे में बात की जो उसके लिए बहुत अद्भुत थी। यहाँ जिस हिब्रू शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है पेले।
पेले, इसका मतलब कोई चमत्कार है क्या?
नहीं, इसका मतलब चमत्कार नहीं है, इसका मतलब है ईश्वरीय कार्य प्रणाली की वो जानकारी जो इंसान की समझ और क्षमता से पूरी तरह परे है। वॉल्टन इसे समझाते हुए कहते हैं कि है इंसान के पेग्रेड से बाहर की चीज है।
अच्छा, मतलब जॉब ये मान लेता है कि पूरे ब्रह्मांड का गणित उसकी समझ से बहुत ऊपर है। वो स्वीकार करता है कि उसने अज्ञानता में ईश्वर की योजनाओं को धुंधला किया,
क्योंकि वो सोचता था कि ब्रह्मांड केवल उस सीधे प्रतिशोध के सिद्धांत पर चलता है।
और यहीं पर वो पश्चाताप वाली बात आती है जो अक्सर गलत समझी गई है। हमारे अनुवादों में लिखा होता है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ।
हाँ, लेकिन हमें यहाँ हिब्रू व्याकरण को समझना होगा। हिब्रू में क्रिया का रूप बदलने से पूरा अर्थ बदल जाता है।
जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता है,
कुछ वैसा ही जैसे मैंने तोड़ा और मैं टूट गया में फर्क होता है। जॉब के दोस्त एलिफाज ने उसे शूव करने के लिए कहा था, जिसका मतलब होता है अपने पापों से लौटना।
लेकिन जॉब यहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है?
जॉब यहाँ क्रिया का निफल रूप इस्तेमाल करता है।
तो ये निफल रूप कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो माफी मांग रहा है?
नहीं, इसका मतलब पाप के लिए माफी मांगना नहीं है। निफल रूप अक्सर एक रिफ्लेक्सिव या पैसिव अर्थ देता है। यहाँ इसका मतलब है अपने पिछले बयानों पर पछतावा जताना या उन्हें वापस लेना।
ओहो, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पापी हूँ।
नहीं, वो ये कह रहा है कि अज्ञानता में मैंने ईश्वर के न्याय के बारे में जो बातें कही थी, मैं उन्हें वापस लेता हूँ, मैं अपनी उस सोच को खारिज करता हूँ।
और वो जो धूल और राख में बैठने की बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही छवि है कि वो मिट्टी में बैठा रो रहा है।
यहाँ भी अनुवाद का एक बहुत बड़ा खेल है। वहाँ प्रेपोजिशन यानी पूर्व सर्ग अल का इस्तेमाल हुआ है। प्राचीन समय में धूल और राख में बैठना शोक मनाने का तरीका होता था।
तो अल का मतलब क्या हुआ यहाँ?
अल का उपयोग करके जॉब ये कह रहा है कि वो इस धूल और राख से दूर जा रहा है या इसे अपने दिमाग से बाहर निकाल रहा है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार इनसाइट है। मतलब जॉब अब धूल में बैठकर अपनी किस्मत पर रो नहीं रहा है।
बिल्कुल नहीं,
वो खुद से धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ है और कह रहा है, मैं बेवकूफ था जो सोचता था कि मैं दुनिया के सारे गणित को समझ सकता हूँ।
यही इस पूरी किताब का चरम बिंदु है। वो अपने शोक मनाने के तरीके को खत्म कर रहा है। वो वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार कर रहा है जैसी वो है।
ये हार मानकर घुटने टेकने के बारे में नहीं है।
नहीं, ये एक बहुत ही गहरी समझ के साथ दोबारा उठ खड़े होने के बारे में है। वो इस जटिल सच्चाई को गले लगा रहा है।
ये सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब हम सोचते हैं कि जॉब आखिर में हार मान लेता है, लेकिन असल में वो एक नया नजरिया पाकर अपने मातम को खत्म कर रहा है।
बिल्कुल।
अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे यहोवे के सवाल इंसानी अहंकार को तोड़ देते हैं। हमने जाना कि बेहमौत और लेवियाथन गहरे प्रतीक हैं। बेहमौत हमें सिखाता है कि तूफानों के बीच हमें शांत और अडिग होना चाहिए,
और लेवियाथन याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का रचयिता कोई पालतू जानवर नहीं है जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्मूले में कैद कर सकें।
और अंततः जॉब का असली पश्चाताप मिट्टी में बैठकर रोना नहीं था, बल्कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करके जीवन की विशाल सच्चाई को गले लगाना था। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में श्रोताओं के लिए एक विचार आ रहा है।
वो क्या?
एक ऐसा विचार जो जीवन को देखने के तरीके को चुनौती दे। अगर ईश्वर ने जानबूझकर इस दुनिया में लेवियाथन जैसी अव्यवस्था की ताकतों को जगह दी है, अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसी चीजें बनाई हैं जिन्हें पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता।
बहुत गहरा सवाल है।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी तरह से सुरक्षित और जोखिम मुक्त जीवन की जो हमारी चाहत है, वो वास्तव में उस दुनिया का ही तिरस्कार है जिसे ईश्वर ने इतनी आजादी और जटिलता से डिजाइन किया है?
ये सोचने वाली बात है।
शायद जीवन में आने वाली उथल पुथल, वो थोड़ा सा केओस, कोई खराबी या बग नहीं है। शायद वो इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम का एक जरूरी फीचर है जो हमें ग्रो करने का मौका देता है। क्योंकि अगर दुनिया सच में उस वेंडिंग मशीन की तरह होती, तो वो दुनिया बहुत ही उबाऊ और सीमित होती। सोचिएगा जरूर।
बहुत ही शानदार विचार है।
आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।